बकरा 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 बिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, बिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله
السلام والسلام عليك يا رسول الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
الصلاه والسلام عليك يا نبي الله
السلام والسلام عليك يا
نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आली शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ठंडे पानी से भी ज़्यादा ख़ताओं को मिटा देता है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ना ग़ुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादीन, आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है बकरीद की। जी हाँ, और मेरे साथ होती हैं दो टीमें। मेरे दाएं जानिब टीम है टीम और बाएं जानिब टीम है टीम। जी देखते हैं जोश किसमें है। और इसमें हम कलाम भी सुनते हैं, नाते भी सुनते हैं, हम इसमें अशार भी सुनते हैं, वाकियात भी सुनते हैं, एक्टिविटी भी होती है जिसमें बच्चे हिस्सा लेते हैं। और आप जो घर में बच्चे बैठे हैं आप भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आप इस तरह आके यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन आप घर में इत्मीनान से तो बैठ सकते हैं। जी हाँ, आपका घर हो, स्क्रीन पर मदनी चैनल हो और आपने कहीं नहीं जाना, अगर कोई बात पूछी जाए तो आप भी उसमें शामिल हों। जरा मैं घर में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, अब देखना ये होगा अभी होगा। आप भी प्रोग्राम से जुड़े रहिए और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू किया आपके लिए। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो ये प्रोग्राम मैंने दिया आप लोगों को जो घर पर बच्चे बैठे हैं। ये प्रोग्राम किसका है? बच्चों का है। और जो घर में बच्चे बैठे हुए हैं तो भाई जब शुरू आप लोगों के लिए किया है तो देखना भी आपका है। ये प्रोग्राम किसका है? बकरीद की रौनक है। ये प्रोग्राम किसका है?
मेरा।
किसका है?
मेरा।
दे भाई माइक। किसका है?
मेरा।
ये कह रहा है मेरा।
मेरा।
क्या मेरा?
प्रोग्राम।
प्रोग्राम का नाम क्या है?
बकरीद की रौनक है।
जी किसका है?
मेरा।
आप ले लें फिर हम जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम किसका है? हाँ, अब ये प्रोग्राम किसको दिया हमने? आपको दिया। आपको दिया, किसको दिया? तो ये प्रोग्राम किसका है? मेरा है ये प्रोग्राम। अच्छा, जब हम कहते हैं हमारा है ना तो फिर सबका हो गया। हर कोई इस प्रोग्राम को कहे मेरा प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है?
मेरा।
इस प्रोग्राम में आया मैं हूँ, देखूंगा भी मैं और दिखाऊंगा भी मैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की आपने दूसरे बच्चों को भी दावत देनी है कि भाई किड्स मदनी चैनल पर प्रोग्राम आ रहा है और प्रोग्राम का नाम है। अब सब मिलकर बोलें बकरीद की रौनक। जी हाँ, प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है बकरीद की। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक कलाम।
दिल खुशियों के आए अबू बकरा लाए।
काश तसव्वुर में मदीने की गली गली हो। काश तसव्वुर में मदीने की गली गली हो। काश तसव्वुर
बसी हो।
तो ये हमारा था सेगमेंट जिसमें हमने आपको कलाम सुनाया। अब इंशाल्लाह ताला बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का सबक।
दिल खुशियों के आए अबू बकरा लाए।
प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो है एक बादशाह के बारे में बताऊंगा। और ये जो बादशाह था ये काफिर बादशाह था और उसका नाम था नमरूद। कौन था?
नमरूद।
खराब बादशाह था।
खराब बादशाह।
नमरूद गंदा बादशाह था। क्यों? इसने गंदे गंदे काम किए, खराब खराब काम किए। उन्हीं खराब काम में एक काम ये भी था कि इसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं रब हूँ। और हमारा रब कौन है?
अल्लाह
ताला। अल्लाह ताला हमारा रब है, वही हमें पालता है, वही सारे जहान का मालिक है। अब इसने कहा कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ, इसने कर दिया खुदाई का दावा। अब ये गलत बात हो गई, बहुत गलत बात हो गई। और इसी नमरूद बादशाह ने हजरत इब्राहिम अला नबीना वाणी सलात वसलाम को एक बहुत बड़ी आँख लगाई, आपके लिए बहुत बड़ी आँख लगाई। बहुत दिनों तक वो जलती रही। और फिर जब वो आँख बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई, इतनी बड़ी आँख थी कि उस ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता ना तो वो भी जल जाता। इतनी बड़ी आँख उसने लगाई थी। और उस आँख के अंदर डालना किसने था इसको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और जैसे ही हजरत इब्राहिम आला नबीना वाले सलातो सलाम आँख के अंदर तशरीफ ले गए तो आग ने आपको नहीं जलाया। हाँ, आग ने आपको नहीं जलाया। और आग जो थी वापस सलामती आली हो गई, ठंडी हो गई, यानी आपको कुछ भी नहीं हुआ। और आप उस आँख के अंदर चलते फिरते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जब आप आँख से बाहर आए, अब नमरूद की तो नाक कट गई ना कि मैंने इनको आँख में डाला और ये जिंदा बच गए, ये कैसे हुआ? तो अब जब आप आँख से महफूज रहे, ये आपका दुश्मन बन गया। नमरूद जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया और तकलीफ़ पहुँचाने लगा। जो लोग मुसलमान हो गए, ईमान लेकर आ गए, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने लगा। इसने एक और ख़राब काम किया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आ गए تو اب اس نے ایک اور تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کری اور وہ یہ تھی کہ اس نے کھانے پینے کا جو سامان تھا, کھانے کا سامان تھا اناج وغیرہ, اس کو اسٹاک کر لیا, جمع کر کے رکھ لیا. یعنی اب مارکیٹ میں جو سامان تھا وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا. اب جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ جو ایمان لے کر آئے تھے ان لوگوں نے کھا لیا. لیکن جب مارکیٹ میں سامان نہیں رہا, اب سامان نہیں مل رہا, اناج نہیں مل رہا کھانے کا, تو اب نمرود کے پاس سامان تھا, نمرود کے پاس سامان تھا, اناج وغیرہ تھا. تو لوگ اس کے پاس جاتے کہ ہمیں کھانے کے لیے دے دیجئے. تو نمرود بادشاہ کہتا کھانا ملے گا لیکن مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور کہو کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی کافر کھانا کھاتے تھے لیکن مسلمان لوگ کھانا
نہیں کھاتے,
کیونکہ ان کے پاس اناج وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتی تو وہ ان کے پاس نہیں جاتے. اب اسی طرح جب کھانے کو کچھ نہیں رہا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی نمرود کے پاس گئے اور نمرود سے کہا کہ تمہارے پاس جو اناج وغیرہ ہے, آٹا وغیرہ ہے, جو بھی کھانے کی چیز ہے, اس میں سے ہمیں بھی دو, ہماری قوم کو بھی دو جو ایمان لے کر آئے. تو کہا میں صرف اسی کو دوں گا جو کہ جو مجھے خدا مانے گا. تو پوچھا یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ سن کر نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب اس پاگل نے کیا کام کیا؟ یہ کہنے کے بعد اس نے دو لوگوں کو بلوایا, نمرود نے دو لوگوں کو بلوایا, ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. بولا یہ تو میں نے بھی کر لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی یہ بیوقوفی دیکھ کر, پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ الٹے الٹے فیصلے کر رہا ہے, اس کی عقل جو ہے چلی گئی ہے, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب سورج مشرق سے نکل رہا ہے, سورج جیسے ہمارے یہاں جہاں پروگرام کر رہے ہیں پیارے بچوں, سورج یہاں سے نکلا ہے, مشرق یہ ہے, یہاں سے نکل کر یوں پڑ جاتا ہے پھر مغرب میں ڈوب جاتا ہے. یہاں سے سورج نہیں نکلتا ہے, یعنی مغرب سے سورج نہیں. روزانہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. نکلتے نکلتے کہاں چلا جاتا ہے؟ مغرب میں. کبھی ایسا ہوا یہاں سے سورج نکلا ہو یہاں ڈوب گیا ہو؟ نہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبا دیتا ہے. اگر تو رب ہے, تو خدا ہے, تو مغرب سے سورج کو نکال. اب یہ تو گھبرا گیا, شرمندہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی کہ یہ کیا بات کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی باتیں ہیں ہی ایسی شاندار قسم کی باتیں ہیں. اب جب یہ بات ہوئی تو یہ شرمندہ ہوا اور شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ اپنے ہی رب سے مانگو. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے دربار سے جب باہر کی جانب نکلے, اب سوچا کہ گھر پر کیا کہیں گے, تو راستے میں ایک ٹیلا تھا مٹی کا, مٹی پڑی ہوئی تھی, کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے تو اس میں سے مٹی بھر لی, تھیلے کے اندر مٹی بھر لی, اور یہی مٹی والا تھیلا لے کر چلے گئے گھر کے اندر, اور گھر میں آ کر آپ آرام فرمانے لگے, سو گئے. اور جو آپ کی زوجہ تھیں, آپ کی جو وائف تھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ سمجھی کہ آٹا آیا ہے, وہ سمجھی ابراہیم علیہ السلام آٹا لے کر آ گئے. تو آپ نے جیسی تھیلے کو کھولا تو پیارے بچوں آپ کیا لے کر آئے تھے؟ مٹی. لیکن جیسی آپ کی زوجہ نے دیکھا تو وہ آٹا تھا, اس میں آٹا تھا, آپ لے کر کے آئے تھے مٹی. اللہ تبارک نے اس کو کیا بنا دیا؟ آٹا. انہوں نے فوراً روٹیاں وغیرہ پکائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, ان کو اٹھایا اور کہا کہ کھانا کھا لیجیے. بولے یہ کہاں سے آیا؟ آپ ہی تو لے کر آئے. تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو جو ہے آٹے میں تبدیل فرما دیا ہے. آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو جو ہے آٹا بنا دیا, اور جو پریشانی وغیرہ تھی جو کھانے کی وہ ختم ہو گئی. اتنے میں نمرود کے پاس, کیونکہ نمرود تو دعویٰ کر چکا تھا میں خدا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا, اور نمرود سے جا کر وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے نمرود کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لے کر آ جا. تو نمرود بولنے لگا میں ایمان لے کر آ جاؤں؟ میں تو کون ہوں, خداؤں میں کیسے ایمان لے کر آ جاؤں؟ تو فرشتے نے پھر دوسری مرتبہ یہ بات سمجھائی، اس کی سمجھ میں پھر تیسری مرتبہ یہ بات سمجھائی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی. اب اس نے کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اتنی بڑی نافرمانی، اتنی بڑی نافرمانی، یہ تو بالکل خراب، مطلب خراب قسم کی نافرمانی تھی کہ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اب اس کو سزا دی. کیا سزا دی؟ اس کی جو قوم تھی جو اس پہ ایمان لے کر آئے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک مچھروں کا عذاب دیا. بہت سارے مچھر آ گئے، بہت سارے، اب مچھر ہی مچھر ہیں، مچھر ہی مچھر ہیں. اب کوئی مچھر جو ہے آنکھ میں جا رہا ہے، کوئی کان میں جا رہا ہے، کوئی ناک میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، اتنے سارے مچھر ہو گئے. اور مچھر کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے، وہ خون چوستا ہے. تو جو نمرود کے ساتھی تھے تو ان کا خون چوسنا شروع کیا، تو بہت سارے لوگ مر گئے، بہت سارے لوگ مر گئے. اب جو نمرود تھا یہ بھی بچتا مچھروں سے کہ مچھر کاٹ نہ لے. پیارے بچوں، اتنے مچھر ہو گئے تھے، اتنے مچھر ہو گئے تھے. ابھی یہ شامیانہ کس چیز کا ہے؟ ابھی شامیانہ لگا ہوا ہے نا، دھوپ ہو رہی ہے، تو یہاں پر دھوپ نہیں آ رہی ہے کیونکہ شامیانہ آ گیا. تو مچھر اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ جہاں بھی وہ مچھر جاتے تھے روشنی نہیں آتی تھی، نیچے کیا آتے تھے؟ سایہ آتا تھا، کیونکہ وہ سایہ کس چیز کا ہو گیا تھا؟ اتنے مچھر ہو گئے تھے، اتنے مچھر ہو گئے تھے. بعض بچے چھت پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ مچھر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر مچھر نہیں ہے، یہ شامیانہ کپڑے کا ہی ہے. اب وہ مچھر اتنے زیادہ ہوئے تو ایک مچھر، اور کہا جاتا ہے وہ لنگڑا مچھر تھا، یعنی اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، تو وہ ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا اور ناک سے داخل ہو کر اس کے دماغ میں چلا گیا. اب وہ دماغ میں ڈنگ مارتا تو نمرود کو درد ہوتا، تکلیف ہوتی، یہ تڑپتا. تو کہا کہ اگر کوئی اس کے سر پر ایک ڈنڈا مارتا، ڈنگ اس کے سر پہ ڈنڈا مارتا، تو وہ مچھر ہل جاتا اور وہ کاٹنا بند کر دیتا. تو ہر تھوڑی دیر بعد نمرود کہتا مجھے مارو، تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک شخص آتا، نمرود کے سر پہ ڈنڈا لگاتا. جیسی ڈنڈا لگتا تو وہ تھوڑا سیٹ ہو جاتا، کیونکہ مچھر جو اندر تھا وہ کاٹنا بند کر دیتا تھا. پھر وہ چلتا پھرتا، کام کاج کرتا، پھر مچھر جیسی اس کے ڈنگ مارتا، مچھر کاٹتا، تو پھر کوئی آگے ڈنڈا مارتا. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد نمرود کو کیا پڑتے تھے؟ ڈنڈے. اب وہ ڈنگ مارے دماغ میں جب بھی تکلیف، کوئی ڈنڈا مارے. اب یہ چلتا رہا، یہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کا یوں عذاب آیا مچھر کے ذریعے. تو ایک لنگڑے مچھر نے، ایک لنگڑے مچھر نے، ایک مچھر نے نمرود کو مار دیا. ڈنڈے پڑتے تھے یا وہ مچھر کاٹتا تھا، اور یوں نمرود جو ہے اپنے انجام تک پہنچ گیا. تو پیارے بچوں، یہ جو میں نے آج آپ کو ایک قصہ سنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور انہی کی یاد میں جو ہے قربانیاں بھی ہیں. اس سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سب دنیا کو بنانے والا کون ہے؟
اللہ.
یہ زمین کس نے بنائی؟
اللہ.
آسمان کس نے بنایا؟
اللہ.
چاند،
اللہ.
تارے،
اللہ.
سورج،
اللہ.
مشرق سے سورج کون نکال رہا ہے؟
اللہ.
دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟
اللہ.
ہوا کون چلا رہا ہے؟
اللہ.
ہر چیز. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟
اللہ.
سب جہان کا مالک، ہمارا مالک کون ہے؟
اللہ.
بس ہمارا رب کریم ہے، ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ. ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟
اللہ
تعالیٰ. ہمیں اناج کون عطا فرماتا ہے؟ ہمیں یہ جانور کس نے دیے ہیں؟ یہ زمین کس کی ہے؟ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس کا دیا ہوا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی کی مرضی ہے وہ ہم سے واپسی بھی لے لے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ساری دنیا جو نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی، جو کچھ بھی ہے نظر کے پاس وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ان باتوں پر بعض بچے جو ہے نا، باتوں باتوں میں کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، معاذ اللہ، کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں، خراب جملے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہم نے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے. جنت ہو گئی، دوزخ ہو گئی، فرشتے ہو گئے، جب اس قسم کے بعد لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، لطیفوں میں ایسی بات کیے جاتے ہیں، مذاق میں کوئی ایسی بات کہتے تھے کہ جنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا دوزخ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی باتیں بچوں ہمیں نہیں کرنی ہے. نہ اس قسم کے لطیفے سننے ہیں، نہ اس قسم کی باتیں سننی ہیں، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہنس تو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہاں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ بولیں یار یہ باتیں مت کریں. کیا بولیں؟ یہ باتیں نہیں کریں، یہ والی باتیں نہیں سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی جگہوں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کڈس مدنی چینل دیکھیں، کیا دیکھیں؟ आप देखें बाद बच्चे कार्टून देखने के शौकीन होते हैं, एक कार्टून होता है वो उड़ रहा है, फिर एक कार्टून होता है वो बम बम करके मार रहा होता है। अब क्या होता है जब वो देखते हैं कि वो मार रहा है, तो जैसे ही कार्टून ख़त्म होता है तो वो जो बच्चा होता है वो भी अपनी छोटी वाली बहन को मार रहा होता है या भाई को मार रहा होता है, या वो समझता है मैं भी वो बन गया हूँ। तो भाई अगर आपने उल्टा उल्टा देखा है तो अब आप उल्टी उल्टी हरकतें करेंगे, आप सीधा सीधा देखें, सीधा सीधा क्या है गुलाम रसूल देखें, कनीस फातिमा देखें, इस किस्म की आप जो हमारे किड्स मदनी चैनल पे चीज़ें आ रही हैं आपने वो देखना है, आपने वाली चीज़ें नहीं देखनी है। वो तो गंदे गंदे नाम ले रहे होते हैं, तो क्या आप भी वो नाम लेंगे? फिर बाज़ कार्टून में ऐसा होता है कि उनके कोई डायलॉग होते हैं, बच्चे वो बोल रहे होते हैं, मैं वो हूँ, मैं यूँ हूँ। ये अच्छी बात कोई है भाई? ये अच्छी बात आप बोले मैं गुलाम रसूल हूँ तो ये अच्छा भी लगेगा, ठीक है। कनीस फातिमा कितना प्यारा नाम है। जो आपके किड्स मदनी चैनल पर आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं आप लोगों ने वही देखना है इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों आपने रहना है हमारे साथ, और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम बकरा ईद की रौनक है। इसमें है मज़े मज़े के सेगमेंट, और एक और सेगमेंट की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और सेगमेंट का नाम है चलो मंडी चले, चलो मंडी चले,
चलो मंडी चले। अब बकरा लाए
बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है, आओ चलो देखे है क्या सरप्राइज अपने लिए रखा।
जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है चलो मंडी चले। क्या नाम है सेगमेंट का?
चलो मंडी चले।
जी अब यहाँ के बच्चे
चलो मंडी चले,
चलो मंडी चले सेगमेंट का नाम है, और इस सेगमेंट में हम कराते हैं बच्चों को मंडी की सैर। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से नाज़रीन के लिए, बहुत से बच्चों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में हम दिखाते हैं बच्चों को मंडी, दिखाते हैं मंडी के जानवर, दिखाते हैं बकरे, दिखाते हैं बैल, दिखाते हैं ऊँट भी दिखाते हैं माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं और करते हैं मंडी की सैर। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मंडी घूम रहे हैं, मंडी की सैर कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भाई मौजूद हैं जिन्होंने जानवरों को पाला है, जानवर की देखभाल की है। तो आइए इनसे भी कुछ सवालात करते हैं, जानवरों से मुतालिक सवालात करते हैं और कुछ दीनी सवालात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम सलाम।
कैसे आप, खैरियत से हैं?
ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र
माशाल्लाह। क्या नाम है आपका?
आशिक हुसैन सियाल।
आशिक हुसैन भाई, और आपका नाम क्या है बाबा जी?
मोहम्मद यार।
माशाल्लाह मोहम्मद यार भाई हैं और आशिक भाई हैं। अच्छा आशिक भाई, आपसे कुछ सवाल कर लूं जानवरों से मुतालिक?
जी भाई जान।
ये सारे जानवर आपके हैं?
जी।
अच्छा माशाल्लाह आपने पाला है इनको?
हाँ जी।
कहाँ के हैं जानवर?
जिला पाकपतन।
अच्छा पाकपतन से आए, माशाल्लाह पंजाब के जानवर।
हाँ जी।
तो आइए कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि जानवर बीमार कैसे होते हैं, मतलब हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए कि जानवर हमारे बीमार ना हो, सेहतियाब रहें, तंदुरुस्त रहें?
जानवर को अच्छी खुराक देनी चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, बीमारी से बचना चाहिए।
गर्मी से आया पंजाबों में बीमार हो सकता है, टीके लगाए ने उत्थे हिफाजत कराई है, टीके लगे ने इंशाल्लाह।
अगर ऐसा हो आशिक भाई कि हम जानवर घर पे लेके गए कहीं से भी मंडी से और वो घर में बीमार हो गया तो अब क्या करें हम?
पास टीका लगवाओ, उन्होंने ज्यादा दवाई डॉक्टर के साथ चेक कराओ, थर्मामीटर ये वो, बुखार कितने कितने नहीं,
ऐसा ही है, डॉक्टर को चेक करवाएं और उनकी गिजा भी अच्छी रखें। और क्या क्या खिलाएं आप ये बताइए?
ये चरा खवा रहा है, ये तूड़ी पा रहा है, ये छोरा की खाड़ पे आ रहा है खाली।
और पानी से मुतालिक बताएं, पानी से मुतालिक क्या एहतियातें होनी चाहिए जानवर की?
पानी टाइम तक हुआ जानवर
टाइम पानी पे
गर्म पानी चाहिए,
गर्म पानी
नहीं पाना, ठंडा पानी पुआ।
अच्छा गर्म पानी नहीं पिलाना, ठंडा पानी पिलाना है, इस बात का भी हमने ख्याल रखना है। आपसे एक दिन सवाल भी पूछ लूं, ये बताइए कि अल्लाह पाक के हुक्म पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या चीज बनाई थी तूफान से बचने के लिए?
कश्ती।
जी माशाल्लाह किश्ती बनाई थी। जवाब हो गया बच्चों? दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। जजाकल्ला मोहम्मद यार भाई और जजाकल्ला आशिक भाई, आपने जवाब हमें दिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आगे की जानिब और देखते हैं मंडी के खूबसूरत से जानवर। ये देखिए माशाल्लाह बच्चों कितना बड़ा जानवर है। आपका क्या नाम है?
इब्राहिम।
इब्राहिम भाई के ऊपर अगर आप खड़े हो आपका नाम क्या है?
सैयद सफी।
अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो फिर इसकी हाइट बराबर हो जाएगी, सही है?
नहीं
नहीं, फिर और भी बड़ा है ये? हाँ। या छोटा है?
बड़ा है।
बड़ा है, अच्छा आपका नाम क्या है?
मोहम्मद हुसैन।
आपका नाम?
मोहम्मद अब्बास।
मोहम्मद अब्बास भाई, जब भी हम किसी अच्छी चीज को देखें, किसी बड़े जानवर को देखें, तो क्या कहना है हमने?
माशाल्लाह।
और एहतियात क्या करनी है उससे? क्या रखना है? फासला रखना है। क्या रखना है?
फासला।
दूर रहें ताकि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ एहतियातें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इन पर अगर हम अमल करेंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों, हमने ये जानवर देखा, अब आगे की जानिब बढ़ते हैं और आपको मंडी की कराते हैं सैर। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, चलते चलते मंडी में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस तरफ हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये व्यापारी भाई हैं, इनके जानवर हैं। आइए इनसे जानवरों के मुताल्लिक़ कुछ सवालात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम सलाम, मोहम्मद दानिश नाम है।
अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद दानिश भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद दानिश भाई, आपसे कुछ सवालात कर लूँ जानवरों से मुताल्लिक़?
जी जी बोलें।
अच्छा मोहम्मद दानिश भाई, ये बताइए कि जानवर बीमार कैसे होते हैं, मतलब हमें क्या एहतियातें करनी है जानवरों की कि वो बीमार ना हो, वो तंदुरुस्त रहें?
जानवर बीमार इस तरीके से होता है, जो मट्टी धूल है ना, और सबसे बड़ी बात ये, हम वहाँ से पंजाब से जानवर लेके आते हैं ना, उसकी जगह चेंज होती है, जब जगह चेंज होती है तो उसको दो तीन थकान होती है, उसको बीमार इस वजह से ज़्यादा होते हैं, उनकी जगह चेंज होने से ज़्यादा जानवर होते हैं। उनको पहले से वैक्सीन करा के लेके अगर आएँ तो यहाँ पे बड़ा उसको फ़ायदा पहुँचेगा उस वैक्सीन का।
वहीं पर वैक्सीन करा,
वहीं पर यहाँ ला के ही वैक्सीन कर सकते हैं उसको।
अच्छा, अगर घर में हमारे, हम घर में लेके गए जानवर, अब वहाँ पर बीमार हो गया, उसका माहौल चेंज हुआ, तो अब क्या करेंगे?
नहीं, यहाँ पे जो पहले जानवर लेके आ जाते हैं, जैसे हम 15 दिन से यहाँ पे जानवर लेके आए हैं, अब 15 दिन पहले लेके आ गए तो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाता है दोबारा। जैसे आप अपने घर लेके जाते हो, करीब सफर है, जो दूर से सफर से करके आते हैं तो जब बीमार होते हैं वो ना, जगह चेंज होती है,
इसलिए बीमार होते हैं,
ज्यादा बीमार इसी वजह से होते हैं।
चलिए जी माशाल्लाह, इस बात का भी ध्यान रखना है, इन चीजों का भी ख्याल रखना है। अच्छा दानिश भाई, ये बताइए कि जानवर जब दो दांत का हो जाता है, जब जानवर बड़ा हो जाता है, तो इसके वही दांत बड़े हो जाते हैं या फिर नए दांत निकलते हैं इसके?
नहीं नहीं जानवर जब दो दांत होता है तो उसके जो दांत होते हैं पहले टूटते हैं वाले, फिर इसके नए सिरे से दांत रहते हैं पहले एक।
अच्छा, जैसे बच्चों के दांत टूटते हैं फिर नए निकलते हैं?
जी जी, ऐसे दो दांत, पहले एक दांत टूटेगा उसका, फिर दूसरा दांत आएगा उसका, इस तरीके से दांत होता है इसके।
अच्छा माशाल्लाह,
पहले दांत टूटते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक दीनी सवाल भी पूछ लूं दानिश भाई आपसे?
दीनी सवाल आएगा तो बता देंगे इंशाल्लाह।
चले जी दानिश भाई, ये बताइए कि अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्या चीज बनाने का हुक्म फरमाया था?
कश्ती। कश्ती बने
जी, किश्ती बनाने का हुक्म दिया था। जवाब हो गया है दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें मालूमात फराम की। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आगे की जाने। जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अब मौका मिला है यहाँ पर मौजूद बच्चे, जो हमारे साथ चार बच्चे मौजूद हैं, इनसे सवालात करने का। तो आइए इनसे कुछ दीनी सवालात करते हैं। पहला सवाल ये है कि बताइए एक ऊँट में से कितने लोगों की कुर्बानी हो सकती है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए।
सात।
सात लोगों की?
जी।
देख लें, दुरुस्त है जवाब?
जी।
आप क्या कहते हैं?
दुरुस्त।
दुरुस्त है, आप क्या कहते हैं?
दुरुस्त है।
क्या जवाब दिए इन्होंने?
दुरुस्त है।
सात लोगों की कुर्बानी हो सकती है एक ऊँट में, जवाब हो गया है
दुरुस्त।
दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। अगला सवाल करते हैं, जवाब कौन देगा? आप देंगे? देख लें, फिर आपसे पूछेंगे। चलें जी, आप ये बताइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज के बनाने का हुक्म दिया था, क्या बनाने का हुक्म दिया था?
किश्ती।
किश्ती बनाने का हुक्म दिया था, जवाब हो गया है
दुरुस्त।
तेज आवाज में बताना है सबने,
दुरुस्त।
माशाल्लाह, अगला सवाल करते हैं, जवाब कौन देगा? यहाँ से लें जवाब, आप दीजिएगा, ठीक है? ये बताइए कि हज और उमरा करने वाले जो लोग होते हैं, वो मक्का पाक में जिन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हैं, सही करते हैं, उन पहाड़ों का नाम क्या है?
सफा और मरवा।
सफा और
मरवा।
मरवा, जवाब हो गया है दुरुस्त हो गया है। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट चलो मंडी चलें ये अपने इख्तिताम तक पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी, जानवरों से मुतालिक बातें सीखी होंगी, और इसके अलावा दीनी बातें भी सीखी होंगी। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड के इस सेगमेंट में। अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए।
तो प्यारे बच्चों, आपने मवेशी मंडी की सैर की, आपने जानवर देखे और आपको जानवर अच्छे भी लगे होंगे, आपका भी दिल चाह रहा होगा मवेशी मंडी चलें। मवेशी मंडी बड़ी मंडी जो ये लगी हमारे कराची के करीब ही, कराची में ही है, लेकिन जो दीगर शहरों में है तो उनको भी हमने सैर करवा दी। तो आइए अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। जी प्यारे बच्चों, अब हम बॉक्स एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका तरीकेकार सुन लें। टीम ए से भी चंद बच्चे जाएंगे, टीम बी से भी चंद बच्चे, तीन बच्चे यहाँ से आएंगे, तीन बच्चे यहाँ से आएंगे। अब आपने गौर से सुनना है, ये क्या लिखा है? कुरान, मसाजिद, नमाज, सरप्राइज, औलिया कराम, ठीक है। ये छः बॉक्स हैं, ठीक है जी, छः बॉक्स हैं। हर बॉक्स के अंदर जो है सवालात रखे हुए, हर बॉक्स के अंदर सवालात रखे हुए, लेकिन कुरान पाक में जो कुरान पाक के इधर लिखा हुआ है पॉइंट्स 10, पॉइंट्स 20, 30, 50। इसका तरीकेकार ये होगा, ये छः बॉक्स हैं, तो किसी भी एक बॉक्स का आपने डिसाइड करना है। आपने कहा हम डिसाइड कर रहे हैं मसाजिद, तो अब मसाजिद से मुतालिक सवालत होंगे, और सवाल का जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर जवाब गलत हुआ तो 20 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर इसमें से एक के बॉक्स है सरप्राइज, अगर सरप्राइज आपने लिया तो आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, और अगर गलत हो गया तो लेकिन सरप्राइज बॉक्स जो है आप एक मर्तबा ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुरान पाक, अंबिया इकराम या दीगर जो पांच बॉक्स हैं, इसका आप बार बार भी इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है जी। तरीक़ेकार समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से तीन बच्चे कौन कौन आ रहे हैं? नंबर वन एक आप आ जाइए, नंबर टू एक आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए, और नंबर थ्री एक आप आ जाइए, नंबर वन एक आप आ जाइए, नंबर टू एक आप आ जाइए, नंबर थ्री एक आप आ जाइए, ठीक है जी, इधर खड़े हो जाइए, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह खड़े रहना, आप लोग भी इसी तरह खड़े रहना, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने मशवरा करके जवाब देना है, बगैर मशवरे के जवाब नहीं देना, ठीक है। आपसे होंगे 4 सवालात और आपसे भी होंगे 4 सवालात, ठीक है। कौन जीतेगा?
हम।
टीम ए जीतेगी, टीम बी? कौन जीतेगा? भाई बड़ा जोश आ रहा है, आवाज आ रही है, टीम ए कह रहे हैं, टीम ए हम जीतेंगे, टीम बी कह रही है, माइक दीजिए, कौन जीतेगा? टीम बी जीतेगी,
टीम बी
जीतेगी, ये कह रहे हैं टीम बी जीतेगी। आप लोग जाइए, भेज दूं इनको, बोल दें, आप बोल दें, आप क्या कहेंगे इनको?
हम भी मुकाबला करेंगे,
ये कह रहे हैं हम मुकाबला करेंगे, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये अभी थोड़ी देर बाद फैसला हो जाएगा कि कौन ये सेगमेंट जीतता है। अब जिसको सवालात के जवाब आते होंगे वो ये मुकाबला जीत जाएगा, ठीक है जी। और मशवरा करके जवाब देना है, और हम 10 तक गिनती गिनेंगे, अगर जवाब नहीं आया तो, ठीक है, आप किसी भी एक बॉक्स का इंतखाब कीजिए, 50, 14, 20। जी
मसाजिद।
अब देखते हैं मसाजिद में आपके लिए जो है क्या सवाल आ रहा है। वो कौन सी जगह है जहाँ मुसलमान मर्द जमात से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं?
मस्जिद।
आपने जवाब दिया मस्जिद, इस तरह आपका जवाब हो गया है दुरुस्त। अब आपकी बारी है, इन्होंने तो 20 नंबर हासिल कर लिए हैं, 20 नंबर, आप किस बॉक्स का इंतखाब करेंगे? अभी सोच के रखें आप लोग, ठीक है जी, माइक में आप भी मसाजिद। अब आप लोगों के लिए सवाल है टीम बी, मदीने पाक की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए।
मस्जिद नबी।
आपका जवाब दुरुस्त है,
सुभान अल्लाह।
हां अल्लाह जी, आपकी जानिब
नमाज,
नमाज, नमाज की तरफ आए, 40 पॉइंट की तरफ आए आप, जबरदस्त। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, जवाब दुरुस्त होगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे। वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? वो कौन सी नमाज है जिसमें ना रुकू होता है ना सजदा होता है?
नमाज़े जनाजा।
आप कह रहे हैं नमाज़े जनाजा, जवाब दुरुस्त है,
सुभान अल्लाह,
माशाल्लाह। आप किस तरफ आएंगे? दूसरा सवाल,
औलिया इकराम
50 नंबर, जबरदस्त। अच्छा डिसाइड किया आप लोगों ने, और अब देखते हैं क्या सवाल है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मदार पाकिस्तान के किस शहर में है?
कराची।
पक्की बात है शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाहि ताला का मदार कराची में। कराची में किस जगह है? ये याद नहीं है, लेकिन ये याद है, पक्का पता है? पक्का है,
पक्का।
आपकी हाजिरी हुई है? कहाँ?
बचपन में हुई थी।
कहाँ हुई थी?
भूल गया हूँ, पता नहीं।
क्या भूल गया?
याद नहीं है। कराची में हुई थी।
कराची में किस जगह पर? खारादर में।
हाँ खाड़ा दर्द में,
खाड़ा दर्द में,
खाड़ा दर्द में कहीं।
अच्छा, इनका जवाब
गलत है,
भी गलत है। आपका मजार शरीफ है बिछा। या आप हैदराबाद से आगे की जानी बढ़ेंगे ना, नवाबशाह की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में मदार आएगा इनका, हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिठाई रहमतुल्लाह ताला। तो इस तरह आपसे गलती हो गई, तो आप कितने नंबर पीछे चले गए? -30। ठीक है, तो आप 30 नंबर के कर्जदार हो गए। लेकिन वो मसला नहीं है, अभी सरप्राइज है, हो सकता है आप आगे की जानी आ जाएं। ठीक है, लेकिन मालूम हो गई आपको, अब आपकी जानी आएंगे। तीसरा सवाल,
सरप्राइज,
सरप्राइज की तरफ जाएंगे, 100 नंबर। चलें जी, सरप्राइज में आपके लिए सवाल आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम बताइए जो जंग अहद में शहीद हुए थे।
हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु।
हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह आपका जवाब 100 नंबर वाला हो चुका है, दुरुस्त। अब टोटल कितने नंबर हो गए?
160।
जी आपकी जानी आएंगे, तीसरा सवाल,
सरप्राइज,
सरप्राइज 100 नंबर का। जी अब देखते हैं सरप्राइज में आप लोगों के लिए क्या सवाल आया है। सवाल ये है, खुलफाए राशिदीन में कितने साहबा इकराम अली मिर्दवान दाखिल हैं, तादाद बताइए।
4।
आपने कहा 4, जवाब दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल आपकी जानिब, नमाज, नमाज से मुतालिक सवाल होगा और 40 नंबर मजीद आप हासिल कर सकते हैं। वैसे ही आप आगे की जानिब हैं, किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है?
किबला शरीफ की तरफ।
जी हाँ, खाने काबा की तफरुक करके नमाज अदा की जाती है, जवाब दुरुस्त है।
सुभानअल्लाह।
कितने हो गए भाई?
200।
माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी जानी मारा
कुरान पाक,
कुरान पाक देखते हैं जी, कुरान पाक 10 नंबर का सवाल। चले जी, पूरा कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ? पूरा कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ?
2 साल।
2 साल पूरा कुरान पाक बच्चों तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कितने?
23 साल के अरसे में।
23, 23 ईयर्स में। कितने? 23। इसको याद रखिएगा, तो काफ़ी नंबर आपके बढ़ गए, काफ़ी नंबर आपके
बढ़ गए,
माइनस हो गए। तो जी स्कोर बोर्ड ये बता रहा है कि तोहफे जो पेश किए जाएंगे, तोहफे दिए जाएंगे टीम
ए को। सुभान अल्लाह।
तो ये आज का मुकाबला जीत लिया हमारी टीम ए, और दूसरे नंबर पर आए हैं टीम
बी।
बी माशाल्लाह, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, ये पर्ची जज़ाकअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट जो कि आपने देखा एक्टिविटी बॉक्स के जरिए एक एक्टिविटी करवाई गई। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जानवरों के हुकूम।
दिल खुशियों के आए अबू बकरा लाए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स मंडी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट जानवरों ख्याल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम थक जाते हैं, हमारी टांगों में दर्द होता है, भूख प्यास का एहसास होता है, सर्दी गर्मी लगती है, ऐसे ही इन जानवरों के भी मसले होते हैं। तो हमें इन जानवरों के साथ बिल्कुल लापरवाही वाला मामला नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, हमने एक बार फिर अपने प्रोग्राम में जानवरों के एक्सपर्ट को इनवाइट किया है ताकि हम उनसे जानवरों के बारे में अच्छी अच्छी गाइडलाइंस ले सकें और हम इनका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, तो आए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास।
बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ,
क्या बात है। जी तो हमारे साथ इस सेगमेंट में एक एक्सपर्ट मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर पर आम तौर पर कुर्बानी के लिए लाए हुए जानवर किस नस्ल के होते हैं और हम उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम।
जी आपका नाम?
मेरा नाम गुलाम कादर है।
आज आप हमें कौन से बकरे की नस्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे?
मैं आपको गुलाबी बकरों के नस्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा।
जी तो गुलाबी नस्ल के बकरों को गुलाबी कहने की कोई ख़ास वजह?
जो कलर है वो भी प्योर वाइट होते हैं और आप देख सकते हैं इनकी नीचे की गर्दन की खाल काफ़ी लंबी होती है।
जी तो गुलाम कादिर भाई, क्या ये सिर्फ प्योर व्हाइट कलर के ही होते हैं?
जी ये आमतौर पर व्हाइट कलर के ही होते हैं। ये कामोरी नस्ल की तरह इनके कान भी लंबे होते हैं, इनकी टांगें लंबी होती हैं और गर्दन लंबी होती है, और इनके जो पलके हैं वो प्योर व्हाइट कलर की ही होती है, जो इस नस्ल की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है।
जी तो क्या ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं?
जी नहीं, ये हर कंडीशन में नहीं रह सकते। ये तो ना ठंड में इतने रह सकते हैं और ना ही गर्मी में, नॉर्मल कंडीशन में ही रह सकते हैं।
जी तो क्या ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं?
जी हाँ, ये फ्रेंडली नेचर के ही होते हैं, मगर इनका खास ख्याल रखना पड़ता है।
जी तो हमें इनका ख्याल रखने के लिए क्या करना चाहिए?
इनको वक्त पे दूध, गंदम और ये जो जंतर है और इनकी वैक्सीन, ये हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए, तो ये सही रहते हैं।
जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, अगर आप अपने घर में कुर्बानी के लिए गुलाबी नस्ल का जानवर लें तो आपने हमारे एक्सपर्ट से जान लिया होगा कि आपको उनका ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तो आइए अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब। अब हमारे साथ है बोट एक्टिविटी। जैसे हमने यहाँ पर चार बच्चों को और इधर भी चार बच्चों को एक एक बोट दिया है, इस पे लिखा हुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दिखाइए जी, एक तरफ है हज़रत, ये किस नबी अलैहिस्सलाम का नाम है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इस तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब जो सवाल होंगे वो होंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत से मुतालिक। अगर आपको पता है कि जो सवाल किया गया है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से मुतालिक है, तो आपने ये इस तरफ दिखाना है, यानी आपने ज़बान से नहीं कहना, अब आप इस बोर्ड के ज़रिए जवाब देंगे। ठीक है जी, और तरीक़ेकार ये होगा, जिनके हाथ में है बोर्ड वो निगाहें नीचे रखेंगे, ना सामने देखना है ना बराबर आले को देखना है। ठीक है जी, पकड़िए। बताइए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या है? हज़रत इब्राहिम या हज़रत इस्माइल? इधर चारों बच्चों ने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और टीम बी में चारों बच्चों ने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस तरह 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं और 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। सवाल जल्दी बताइए, कुर्बानी करना किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? नीचे निगाहें, सर नीचे रहेंगे। इधर चार बच्चों ने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इधर भी इधर तीन बच्चों ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और एक बच्चा बोर्ड में बता रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इसका जवाब है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो यूं टीम बी के एक बच्चे की गलती की वजह से आपको नंबर नहीं दिए जा रहे हैं और 10 नंबर मजीद दिए जा रहे हैं टीम ए को।
सुभान अल्लाह।
एक और सवाल किया जा रहा है, आखिरी सवाल, और ये आपने बताना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जल्दी से बताइए, ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लकब है? ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का लकब है? नीचे निगाहें रखनी है। आपने जवाब दिया, सबके ही जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस तरह आपको भी 10 नंबर दिए जा रहे हैं, आपको भी 10 नंबर दिए जा रहे हैं।
सुभान अल्लाह।
और स्कोर बोर्ड ये बता रहा है टीम ए ने कितने नंबर हासिल किए? 30 नंबर, और टीम बी ने 20 नंबर। तो इस तरह ये फैसला हो गया, ये मुकाबला भी जीत लिया हमारी टीम ए ने।
सुभान अल्लाह।
तो प्यारे बच्चों, ये थी एक्टिविटी जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम के ज़रिए की गई। इनकी सीरत के चंद पहलू हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। अब इंशाल्लाह एक और सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा आपको प्यारा सा बयान सुनाएगा। आइए बढ़ते हैं बयान की
जानिब।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है
अरफा
यानी 9 ज़ुलहिज्जा के फ़ज़ाइल। प्यारे बच्चों, ज़ुलहिज्जा की 9वीं तारीख को
अरफा
भी कहते हैं।
अरफा
की जमा
अरफात
है। प्यारे बच्चों,
अरफात
का वर्ड जब भी यूज होता है तो उससे मुराद वो मैदान होता है जहाँ पर 9 ज़ुलहिज्जा को हाजी जमा होते हैं। आए प्यारे बच्चों, सुनते हैं कि इस मैदान को अरफात क्यों कहा जाता है। प्यारे बच्चों,
अरफात
का मायने है पहचानना।
अरफात
कहने की वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलहदा हो जाने के बाद आप दोनों की मुलाकात उसी जगह 300 साल के बाद हुई थी और इसी जगह पर आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, इसी वजह से उसे
अरफात
कहा जाता है। दूसरी वजह यह है कि
अरफात
का एक मायने तोहफा भी है। अल्लाह पाक उस दिन हाजियों को मगफिरत का तोहफा अता फरमाता है, इसलिए उसे
अरफा
कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिलचस्प बात और भी है कि 9 ज़ुलहिज्जा यानी
अरफा
के दिन बहुत सारे औलिया कराम अल्लाह पाक के दो नबी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी मैदान अरफात में तशरीफ फरमा होते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आए अब हम सुनते हैं 9वीं ज़ुलहिज्जा के कुछ फजाइल। प्यारे बच्चों,
अरफात
का दिन बहुत ही फजीलत वाला है। हदीस पाक में है, जब
अरफात
का दिन आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जाओ मेरे बंदों को देखो जिनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई है और वो अपना माल खर्च करके और अपने जिस्मों को तकलीफ में डालकर मेरी बारगाह में हाजिर हुए, तुम गवाह हो जाओ मैंने उन्हें बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब
अरफात
का दिन जुम्मे को आए तो तमाम अहले अरफात वालों की बख्शिश हो जाती है। प्यारे बच्चों,
अरफात
के दिन के रोजे की फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान है कि
अरफात
का रोजा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है।
अरफात
का रोजा 1000 दिन के रोजों के बराबर है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो हाजी अरफात के मैदान में मौजूद हों तो उन्हें
अरफात
के दिन का रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अरफात
के दिन हाजी को अरफात में रोजा रखने से मना फरमाया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माह ज़ुलहिज्जा बड़ी बरकतों वाला महीना है। कोशिश करें इस महीने को अच्छे अंदाज से गुजारें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रोजे रखें और अल्लाह पाक को राजी करें। अल्लाह पाक हमें अपनी रिजा और खुशी वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तो प्यारे बच्चों, जो बातें बयान की गई आपने उनको जहन में भी रखना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बकरा 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 बकरा
दिन खुशियों के आए अबू बकरा ला।